संगना पाया कांदे नरोत्तम
नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरा
જ્ઞાનેશ્વરી વૃષ ભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીમદ ભાગવત કે શ્લોક કે ઉપર ચર્ચા નહીં કરેંગે. આજ શ્રી અભિરામ ઠાકુર કા તિરોભાવ દિવસ હૈ, ઇસલિયે શ્રી અભિરામ ઠાકુર કા ગુણગાન કરને કા પ્રયાસ કરેંગે. જિસ પ્રકાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉનકે અનગિનત અવતારો કી ચર્ચા કરને સે હમે દિવ્ય લાભ પ્રાપ્ત હોતા હૈ, ઉસી પ્રકાર સે ભગવાન કે પાર્ષદો કે બારે મેં ઓર ઉનકે શુદ્ધ ભક્તો કે બારે મેં સુનને સે ભી વહી લાભ હમે પ્રાપ્ત હોતા હૈ. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવં યો વેતિ તત્પતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામૈતિ સોવચના. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતા મેં કહેતે હૈ કે જો મેરે જન્મ ઓર કર્મો કો તત્વતઃ જાન લેતા હૈ, उनकी दिव्य स्थिति को जान लेता है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है. तो इसी प्रकार से भगवान के पार्षदों के बारे में भी हमें सुनना चाहिए और हम भी उनके संग को दिव्य धाम में प्राप्त हो सकते हैं. वैसे अभिराम ठाकुर, इनका पहले नाम था श्री रामदास, और ऐसे कहा जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु वृक्ष की एक शाखा है, ऐसे वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में करते हैं. जैसे माधवेन्द्रपुरी ये बीज हैं, उस बीज के अंकुर हैं ईश्वरपुरी, और वृक्ष हैं चैतन्य महाप्रभु, और महाप्रभु के अनेक ऐसे शाखाएं हैं, अनगिनत शाखाएं हैं. उनमें से एक महत्वपूर्ण शाखा है श्री रामदास या श्री अभिराम ठाकुर. वो विशेष करके नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय हैं. नित्यानंद प्रभु के साथ जो द्वादश गोपाल हुआ करते थे उनमें से एक हैं श्री अभिराम ठाकुर. श्री कवि कर्णपुर अपने गौर गणोदेश दीपिका में कहते हैं, पुरा श्री राम नामासी अभिराम महान द्वात्रिंशता जनय एव बाह्यं काश्यं उवाहसः. पूरा मतलब पहले अर्थात ब्रज लीला में जो श्रीराम थे, अभी इस समय वो अभिराम ठाकुर के नाम से प्रकट हुए हैं, और उन्होंने द्वात्रिंशता जनय एव बाह्यं काश्यं उवाहसः. काश्य मतलब एक वृक्ष या लकड़ी. तो उन्होंने धारण किया, उठाया बाह्यम, जो कि द्वात्रिंशता 32 श्लोक नहीं उठा पाए. भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि 32 तो क्या, सैकड़ों लोगों ने प्रयास किया था उस काष्ठ को उठाने के लिए, उठा नहीं पाए, परंतु अभिराम ठाकुर ने आसानी से अकेले उस काष्ठ को उठा दिया. और आगे इसके बारे में संक्षेप में हम चर्चा करेंगे. तो दूसरे शब्दों में अभिराम ठाकुर वो श्री रामा सखा है. आप तो जानते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण नवद्वीप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उनके सारे पार्षद भी गौर लीला में शामिल होने के लिए नवद्वीप या गौर मंडल में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार से श्री रामा सखा भी गौर लीला में प्रकट हुए अभिराम ठाकुर के नाम से. और द्वादश गोपाल हैं वो, इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कहते हैं, रामदास अभिराम सत्य प्रेम राशि सोल सांगे काष्ठा तुली जय कोरलो पांशी. रामदास अभिराम सबसे प्रेम राशि, सबसे प्रेम के भंडार है वो। सख्य रस में द्वादश गोपाल होने के नाते वो भगवान के साथ सख्य रस में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। सोलह सांगे काष्ठतुली ज्योतिपुरी लोग बांशी, एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसमें सोलह से गांठ थे, तो उनको आसानी से उठाया अभिराम ठाकुर ने और उसको बांसुरी के रूप में प्रयोग किया। लिकोरिलो बांशी, बांशी मतलब बांसुरी। तो इस प्रकार के अभिराम ठाकुर जी का वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रत्नाकर में, गौर गणदेश दीपिका में, और एक ग्रंथ है अभिराम लीलामृत जो कि उनके एक शिष्य तिलक राम दास जी ने लिखा है। और ऐसे बताया जाता है अभिराम लीलामृत में ही तिलक राम दास कहते हैं कि एक बार मेरे गुरु महाराज अभिराम ठाकुर मेरे पास आए और उन्होंने अपने चरण कमल जो है मेरे सर पर, मेरे कपाल पर रखे और मुझे आदेश दिया कि मेरी लीलाओं का वर्णन करना, ग्रंथ लिखना। और जैसे ही अभिराम ठाकुर ने ऐसी कृपा की तिलक राम दास के ऊपर, तो अभिराम ठाकुर की जितने भी लीलाएं हैं समस्त लीलाओं का प्रकाश तिलक राम दास के हृदय में हुआ और फिर उन्होंने अभिराम लीलामृत ग्रंथ की रचना की। वैसे बताया जाता है एक लीला है कि कैसे अभिराम ठाकुर नवद्वीप में प्रकट हुए। हुआ यह कि जब कृष्ण बलराम यहाँ गोपालों के साथ लीला कर रहे थे, क्रीड़ा हो रही थी, और क्रीड़ा के समय कृष्ण बलराम छुपने के लिए नदिया चले गए, नवद्वीप चले गए और वहां उनकी लीला आरंभ हो गई। सारे गोपालों को ले गए, केवल श्रीदामा सखा को भूल गए। श्रीदामा सखा यही रह गए ब्रज में और बाकी सारे ग्वाल बाल चले गए नवद्वीप वहां लीला करने के लिए। तो काफी समय बीत गया, फिर कृष्ण को याद आया, अर्थात महाप्रभु को याद आया कि अरे श्रीदामा तो आया नहीं हमारे साथ, हम यहाँ लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजा, अर्थात बलराम को भेजा, अरे जाओ देखो तुम्हारे पार्टी का है गोपाल, लेकर आओ जल्दी से, हमारा प्रिय है श्रीदाम। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ आए और ढूंढ निकाला, श्रीराम सखा बेचारे अकेले थे, उदास थे कि मुझे नहीं ले गए खेलने के लिए, बाकी सारे ग्वाल बाल चले गए। तो नित्यानंद प्रभु जब आए श्रीदामा सखा के पास, तो श्रीदामा सखा कहने लगे, कौन हो तुम? अरे क्या मुझे पहचानते नहीं? मैं तो वही बलराम हूँ, तुम्हारा बलराम। अरे तुम थोड़ी बलराम हो सकते हो, तुम तो बहुत छोटे हो, ये तो कलयुग की बात है ना, द्वापर युग में तो लोगों का शरीर बहुत बड़ा हुआ करता था। ऐसे बताया जाता है कि द्वापर युग में जो शरीर का माप होता था वो अपने हाथ से 7 गुना ज्यादा और कलयुग में 3.5 गुना ज्यादा। तो नित्यानंद प्रभु अभी कलयुग का शरीर लेकर आए थे, कलयुग के हिसाब से मतलब, तो इसलिए उनका शरीर इतना बड़ा नहीं था। तो श्रीदामा सखा ने कहा कि अब तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, तुम तो बलराम नहीं हो सकते। हाँ मैं बलराम हूँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। ऐसा करो श्रीदाम, तुम भाग पड़ो और जैसे तुम भागोगे, अगर जैसे तुम 10 कदम भागने के पहले अगर मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊं तो फिर जान लेना कि मैं बलराम नहीं हूं। तो श्रीदामा ने कहा ठीक है, तो तुरंत भागना शुरू कर दिया और तुरंत ही 10 कदम तो क्या, 2 कदम भागने से पहले ही नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया। तो अब मान लिया ना कि मैं बलराम हूं, ठीक है, लेकिन जो भी हो तुम जो पहले गए थे मुझे भूल के गए, अब मैं नहीं जाऊंगा, ये कौन सी जगह है, नदिया वगैरह में कोई जगह में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, उस समय मुझे भूल गए, अभी आकर मुझे याद आ गई, अभी मुझे ले जाने के लिए आए हो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आओ तो सही, आओ तो सही। तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत दुख था श्रीरामा सखा के हृदय में कि मुझे भूल के चले गए थे ये लोग। तो फिर अंततः श्रीधाम मान गए, लेकिन अपने आप को विस्तार करके रामदास के रूप में उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ भेज दिया। तो सीतामा सखा यही रह गए और उनके विस्तार श्री रामदास जो आगे चल के अभिराम ठाकुर के रूप में जाने गए वो नदिया में आ गए। तो नदिया में जब आए तो नित्यानंद प्रभु के आदेश अनुसार उन्होंने मालिनी देवी से विवाह किया और उनके रहने का स्थान था खानापुल कृष्णनगर। कृष्णनगर नाम का एक गांव है, वो नवद्वीप के पास जो कृष्णनगर है उसमें नहीं, ये हुगली जिले में है और एक द्वारकेश्वर नदी के तट पर ये गांव है, इसलिए इसे खानापुल कृष्णनगर कहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कुल मतलब तट, खाना संबोधन करता है द्वारकेश्वर नदी को, तो खानापुल कृष्णनगर वो कृष्णनगर गांव है जो कि द्वारकेश्वर नदी के तट पर है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अभिराम ठाकुर के सपने में आए और उन्होंने कहा कि देखो मैं इस स्थान में, इस बकुल वृक्ष के पास में जो स्थान है इसी के पास में मैं नीचे मिट्टी में हूं, तो मिट्टी की खुदाई करो और मुझे प्रकट कराओ, मेरी स्थापना करो, मेरी सेवा करो, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम्हारी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। ये तब हुआ जब ये अभिराम ठाकुर अपने व्रज लीला के भाव में बिल्कुल अपने अंतकरण में स्थित थे, मस्त थे। तो फिर अभिराम ठाकुर ने खुदाई शुरू कर दी वहां पे और वहां पे एक स्वयंभू बहुत ही सुंदर मूर्ति निकली गोपीनाथ जी की और गोपीनाथ जी की स्थापना वहां अभिराम ठाकुर जी ने की उस स्थान में और वहां सुंदर मंदिर बना और वहां पे ब्रजवल्लभ और गोपाल ये दो मूर्तियां भी आई और एक शालिग्राम शिला थी। शायद ये जितने भी मूर्तियां हैं अभी तक हैं ये विग्रह है इस मंदिर में खानापुर कृष्णनगर में। और जिस स्थान से गोपीनाथ जी प्रकट हुए जहां खुदाई चल रही थी वहां एक कुंड बना, इस कुंड का नाम है राम कुंड या अभिराम कुंड। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कुंड का जल कपान करता है या इसमें स्नान करता है तो उसे दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। और उसके पास में ही एक बकुल वृक्ष है जिसे सिद्ध बकुल कहते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर का स्थान भी है पुरी में सिद्ध बकुल, वैसे यहाँ खानापुर कृष्णनगर में भी एक सिद्ध बकुल है और उस इलाके को सिद्ध बकुल कुंज कहते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ की अभिराम ठाकुर पहली बार इस कृष्णनगर गांव में आकर बैठे थे और वहां उनको ये सपना आया था, स्वयं गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे। तो ये मंदिर अभी तक वहां पर है और अभिराम कुंड भी, जैसे लोगों को पता चला कि ये सारी लीला यहाँ पर हुई है तो बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे और आज भी हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के सप्तमी में, मतलब आज वही तिथि है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वहां कुंड में स्नान करते हैं और गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि एक गोपीनाथ जी के विग्रह को स्वयं की सेवा स्वयं अभिराम ठाकुर ने की थी। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौर मंडल परिक्रमा कर रहे थे तो वो भी अपने शिष्यों को लेकर यहाँ इस स्थान में आए थे और उन्होंने अभिराम ठाकुर का गुणगान यहाँ किया था और वहां पर वहां के जो सेवक हैं उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था, उनका सम्मान किया था। तो अभिराम ठाकुर जो है वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका प्रचार भी उतना ही शक्तिशाली था। वो बड़े विद्वान थे, साथ साथ संगीत विशारद, नाट्य विशारद, सारी कलाएं जानते थे, तरह तरह के वाद्य बजा सकते थे, सुंदर कीर्तन भी कर सकते थे और प्रचार भी बहुत जोरदार किया करते थे। अनेक नास्तिक लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया और उनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता था, बहुत भयानक क्रोध था उनका, इसलिए उनके क्रोध से भी सारे नास्तिक लोग बहुत डर जाते थे। इस प्रकार से इतनी शक्ति अधिराम ठाकुर की थी कि बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने जगह जगह कर दिया। ऐसे बताया जाता है कि जब वो कोई पत्थर को दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, वो पत्थर फूट जाता था। केवल अगर वो प्रामाणिक कोई शिला थी, विष्णु की शिला, विष्णु शिला, शालिग्राम शिला, तब वो शिला को कुछ नहीं होता था। तो कभी कभी अभिराम ठाकुर वैसे परीक्षा करते थे, ये असली शालिग्राम है या नहीं, वो दंडवत करते थे। और अगर असली शालिग्राम होता तो कुछ होता नहीं शालिग्राम, और अगर नकली शालिग्राम होता तो वो टूट जाता। तो कबीराज गोस्वामी भी उस लीला का वर्णन करते हैं, जबकि अभिराम ठाकुर ने सारा वृक्ष का वृक्ष उठा डाला। अचानक ब्रज भाव में जब मग्न थे, अपने गोपाल स्वरूप का स्मरण आया और इच्छा की कि मैं बांसुरी बजाना चाहता हूं। वैसे ऐसा नहीं है कि केवल श्री कृष्ण के पास बांसुरी होती है, बांसुरी तो सारे ग्वाल बालों के पास होती है और कई लोग बजाते हैं, परंतु कृष्ण जैसे बांसुरी कोई नहीं बजा सकते। तो अभिराम ठाकुर अर्थात श्रीराम तथा को इच्छा हुई कि बांसुरी बजाना है मुझे। इधर उधर देखा, कहीं बांसुरी मिली नहीं। देखा कि यहाँ एक वृक्ष पड़ा है जो बहुत बड़ा वृक्ष था, तो बड़े आसानी से उस वृक्ष को उठा दिया अभिराम ठाकुर ने और उसको बांसुरी बनाकर उसे बजाने लगे। तो ये है अभिराम ठाकुर की दिव्य शक्ति। अभिराम लीलामृत में एक बहुत ही अद्भुत लीला का वर्णन आता है। नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार अभिराम ठाकुर ने विवाह किया, अभिराम ठाकुर ने प्रचार किया, लेकिन जब स्वयं नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया वसुधा देवी और जानवा देवी से, और उनके जब संतान हुए, तो उनका दर्शन जब अभिराम ठाकुर करने आए तो बहुत अद्भुत घटनाएं हुई। पहली बार नित्यानंद प्रभु के संतान का दर्शन किया और जैसे ही उन्होंने दंडवत किया तो बच्चे का देहांत हो गया। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हो गया। तो अभिराम ठाकुर ने कहा कि हाँ ठीक है, इसका मतलब है ये स्वयं स्वरूप नहीं है। ये अभिराम लीलामृत में वर्णन आता है। तो नित्यानंद प्रभु हालांकि स्वयं भगवान है, स्वयं बलराम है, फिर भी वो मनुष्य समाज में आके लीला कर रहे थे, तो उन्होंने भी शोक प्रकट किया। जैसे एक साधारण गृहस्थ को होता है जबकि उसके संतान की मृत्यु होती है, तो अभिराम ठाकुर चले गए। थोड़े समय बाद दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, फिर से अभिराम ठाकुर आए। नित्यानंद प्रभु ने उनका स्वागत किया और अभिराम ठाकुर ने कहा मैं आपके बच्चे का दर्शन करना चाहता हूँ। नित्यानंद प्रभु थोड़े बहुत घबरा गए लेकिन फिर मना नहीं कर पाए। तो दूसरे बच्चे को देखा अभिराम ठाकुर ने, दंडवत किया। जैसे ही दंडवत किया इस दूसरे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। तो वहां हाहाकार मच गया, वसुधा देवी, जानवा देवी सब शोक करने लगे। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो रहा है, जैसे ही दंडवत करते हैं बच्चा मर जाता है। ऐसे 3, 4, 5, 7 बार ऐसे हुआ। स्मरण आता है जैसे जब देवकी को ऐसे पुत्र हुए थे, वैसे एक के बाद एक कंस आके मारता गया। लेकिन ये तो अभिराम ठाकुर है, ये तो भगवान के पार्षद है, तो कंस तो नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। फिर आठवीं बार जब एक संतान हुए वहां पर, वो थे गंगा देवी, वसुधा देवी की पुत्री कन्या हुई। तो वहां पर अभिराम ठाकुर आए, अभिराम ठाकुर ने दंडवत किया और बच्चे को कुछ हुआ नहीं। तो फिर अभिराम ठाकुर ने घोषणा की कि हाँ अभी मेरे साथ धोखा नहीं हुआ है। और उसी समय उन्होंने गंगा देवी के ऊपर अष्टक एक प्रार्थना स्तुति की रचना की उसी समय, गंगा देवी अष्टकम। और उसके बाद और एक संतान का जन्म हुआ थोड़ी देर बाद। और इस समय नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मैं आमंत्रण अभी अभिराम ठाकुर को नहीं दूंगा, सबको बुलाऊंगा, सारे महंतों को बुलाऊंगा, वैष्णवों को बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, लेकिन अभिराम ठाकुर को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि बहुत खतरा है, इस बार आके दंडवत कर ले, मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। देखिए ये सब भगवान की लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु तो बलराम है, आध्यात्मिक बल के स्रोत है, तो भले उनके पुत्र की रक्षा वो नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते हैं, परंतु वो अभिराम ठाकुर का गुणगान कराना चाहते हैं, अपने पार्षद अपने भक्त अभिराम ठाकुर के गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे किया। तो एक बार फिर वक्रेश्वर पंडित वहां गए खानापुर कृष्ण नगर में अभिराम ठाकुर के घर में, पर अरे पता है क्या, नित्यानंद प्रभु को एक घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो क्या आमंत्रण नहीं मिला है आप सबको? नहीं, हमें आमंत्रण नहीं मिला है। अच्छा, तो मालिनी देवी कहने लगी, नहीं ऐसा है कि हम जो गोपाल है ना, ये गोपाल ये अभिमान का कोई विचार नहीं करते, भले आमंत्रण आए नहीं आए, वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उनको आमंत्रण नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। तो फिर लोकेश्वर का, नहीं नहीं आपको तो आना चाहिए, आप तो आपके बिना अनुष्ठान जो है अपूर्ण रह जाएगा, ये ठीक नहीं, आपको आना चाहिए, क्यों नहीं निमंत्रण दे रहे हैं आपको नित्यानंद प्रभु? तो अभिराम ठाकुर ने कहा कि सभी लोग डरे हुए हैं कि मैं अगर आऊंगा मैं प्रणाम करूंगा, हो सके बच्ची की मृत्यु हो जाए, और वैसे भी नित्यानंद प्रभु ने सारे माझियों को जो नौका चलाने वाले लोग हैं उनको कह दिया कि अब अभिराम ठाकुर आएंगे तो नहीं ले जाना नदी पार। तो अभिराम ठाकुर ने सोचा कि ठीक है चलो हम जाते हैं, अभी बकरेश्वर जी इतना कह रहे हैं तो जाना चाहिए, वैसे भी हमारा कर्तव्य है। तो जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंचे तो पहले माझी ने पूछा, अच्छा आपको जाना है, आपका नाम क्या है बताइए, थोड़ा संशय हुआ उस माझी को। अरे मेरे नाम से क्या करो, मुझे ले जाओ। नहीं देखो, नित्यानंद प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि अभिराम ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति आएगा तो उसे नहीं ले जाना, क्योंकि मेरे इतने बच्चे हुए, जब भी वे आके प्रणाम करता है मेरे बच्चों को तो उनकी मृत्यु हो जाती है, अब मैं तो गृहस्थ हूँ और ऐसे बार बार होता रहेगा तो क्या होगा। तो माझी ने कहा, नहीं नहीं मैं मुझे लगता है कि आप ही अभिराम ठाकुर हूँ, तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। और उस समय उनको डर था, नित्यानंद प्रभु एक ओर से का आदेश था, दूसरी ओर अभिराम ठाकुर का भी क्रोध, वो सब जानते थे कि कैसा है, तो उन्होंने अपने नौके में जल डालकर उसे डुबा दिया। और जैसे ये हुआ, दूसरे जो नौका चलाने वाले लोग थे उनको पता चला कि हाँ ये अभिराम ठाकुर है, तो उन्होंने सब अपने नौके को साथ से डुबा दिया। फिर तो अभिराम ठाकुर ने क्या किया, अपना उतरिया उतारा, उतरिया जल के ऊपर डाल दिया और उस उतरिए के ऊपर बैठकर नदी पार करके चले गए। तो सभी लोग वहां आश्चर्यचकित हो गए। तो उधर नित्यानंद प्रभु को पता चला कि मेरी योजना फेल हो गई, असफल हो गई, अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। वसुधा देवी, जानवर देवी भी थोड़ी चिंता में पड़ गए। तो फिर एक जगह नित्यानंद प्रभु ने अभिराम ठाकुर को बुलाया और जानवा देवी वसुधा देवी ने बड़े प्रेम से अभिराम ठाकुर को खूब प्रसाद खिलाया, और इतना खिलाया कि जितना भी प्रसाद बना था घर में वो सब अभिराम ठाकुर ने खा लिया, और चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे क्या कर दिया, अभी सारा प्रसाद तो खत्म हो गया, अब मैं महंतों को क्या खिलाऊंगा। अरे जब हम ग्वाल बाल खाते हैं ना, हम लोग खूब खाते हैं, लेकिन प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, जाओ पात्र जाके देखो कितना प्रसाद है। तो नित्यानंद प्रभु वापस गए रसोई घर में, देखा कि सारे पात्र भरे हुए हैं, तो आश्चर्यचकित हो गए। फिर अभिराम ठाकुर ने कहा, अरे बच्चे का दर्शन करने के लिए नहीं ले जाओगे क्या? अरे क्यों देखना है बच्चे को, क्या बात है, क्यों हर बार आप आते हो, इस बार तो ऐसे नहीं करना। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, देखो जब बच्चा स्वयं स्वरूप है तब उसे कुछ नहीं होगा। तो नित्यानंद प्रभु फिर ले आए और फिर अभिराम ठाकुर ने दंडवत किया उस बच्चे को, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, दो बार तीन बार दंडवत किया फिर भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तो अभिराम ठाकुर को बहुत आनंद आया। हाँ सही है, ये स्वयं स्वरूप, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। नित्यानंद प्रभु जन्मा माता और पुत्र देव माता को बहुत चयन हो गया। ठीक है चलो, तो ये थे वीरचंद्र नित्यानंद प्रभु के पुत्र। वीरचंद्र वास्तव में क्षीरोदक्षायी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ऐसा गौड़ गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं। तो वीरचंद्र के ऊपर उन्होंने अशक की रचना की, जैसे गंगा देवी के बारे में किया था वैसे वीरभद्र के बारे में भी उन्होंने वीरभद्राष्टकम की रचना उसी समय कर ली। तो यह है अभिराम ठाकुर की अद्भुत लीला। एक बार उन्होंने सुना कि ये गोपाल गुरु नाम का लड़का है, इसके बारे में हमें बहुत सुना है, जाके उसकी परीक्षा लेते हैं, चलो जाते हैं। तो ये गोपाल गुरु वास्तव में ये छोटे बच्चे थे जिनके ऊपर महाप्रभु की बड़ी कृपा हुई थी। आगे चल के ये गोपाल गुरु गोस्वामी बने, वक्रेश्वर पंडित के शिष्य हुए। पहले इनका नाम था मकर ध्वज पंडित, लेकिन प्रेम से सभी लोग विशेष करके महाप्रभु इस बालक को गोपाल बुलाया करते थे। तो एक बार हुआ ये कि जब एक भक्त शौचालय में जा रहे थे तो उन्होंने अपना जूता ही पकड़ लिया था ऐसे। तो गोपाल ने पूछा कि अरे ऐसे क्यों जा रहे हो आप? तो उस भक्त ने उत्तर दिया कि मैं शौच करने जा रहा हूँ, एक अशुद्ध स्थान है और अशुद्ध कार्य है, तो ऐसे समय भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जगह में पवित्र चीज नहीं करनी चाहिए। तो गोपाल तो उस समय बालक था, तो गोपाल ने उत्तर दिया कि अरे ऐसे आप क्या कह रहे हो, क्या आपको नहीं पता कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि वो अपवित्र स्थान को भी पवित्र कर देता है, और किसी भी स्थान में हर परिस्थिति में भगवान का नाम तो हमें लेना ही चाहिए, चाहे वो आप मंदिर में हो, चाहे शौचालय में हो, चाहे कहीं भी हो, भगवान का नाम तो निरंतर हमें लेना चाहिए। अगर सोच लीजिए आपकी मृत्यु हो जाए शौचालय में, तो फिर क्या होगा, क्या भगवान का नाम नहीं लेंगे? इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए, इसलिए आपकी उंगली जो है आगे हटा दीजिए। वो भक्त बड़े संतुष्ट हो गए और इस बात को महाप्रभु ने सुन लिया। तो महाप्रभु ने फिर कहा कि अरे ये बच्चा तो साधारण बच्चा नहीं, ये तो हमारा गुरु है, तो आज से इसका नाम होगा गोपाल गुरु। तो सभी भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर गोपाल गुरु को बहुत प्रेम देने लगे। तो जब गोपाल गुरु की ख्याति बढ़ गई, सब जगह वो प्रसिद्ध हो गए, तो अभिराम ठाकुर ने सुना चलो देखते हैं जाके। तो खबर फैल गई पूरी में कि अभिराम ठाकुर गोपाल गुरु के सामने दंडवत करने आ रहे हैं, और सभी लोग भयभीत हो गए। कोई ऐसे नास्तिक व्यक्ति नहीं होता अगर वो जो कि अभिराम ठाकुर के दंडवत को सहन कर सकता। जब नित्यानंद प्रभु के ही सात बच्चों के साथ ऐसे हुआ तो साधारण व्यक्तियों की बात और नास्तिकों की बात तो दूर रही। तो गोपाल गुरु तो शुद्ध भक्त हैं, महाप्रभु की कृपा है के ऊपर सभी जानते थे, फिर भी अभिराम ठाकुर की शक्ति भी तो जानते थे। तो सारे लोग, सारे भक्त पुरी के महाप्रभु के पास आए, अभी अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए? तो महाप्रभु ने कहा चिंता नहीं करना। तो अपने चरण कमल उन्होंने गोपाल गुरु के कपाल पर रख दिए और उनके चरण चिन्ह जो है वो एक तिलक के रूप में गोपाल गुरु के कपाल पे आ गए। और ऐसे कहा जाता है कि आज भी जो गोपाल गुरु के परंपरा में दीक्षित हैं वो उस प्रकार का तिलक धारण करते हैं। तो फिर भी गोपाल गुरु को थोड़ा डर था, अब थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ी कुछ समझ भी ज्यादा थी कि लोग ऐसा ऐसा क्या कह रहे हैं। तो जैसे अभिराम ठाकुर आए वहां पे पास में, तो भाग के गोपाल गुरु चैतन्य महाप्रभु की गोदी में बैठ गए, क्योंकि अभिराम ठाकुर दंडवत करने आ रहे हैं। तो महाप्रभु ने बिठाए गोदी में, कोई चिंता नहीं करना मैं हूं। तो अभिराम ठाकुर आए, अभिराम ठाकुर ने दंडवत किया और गोपाल गुरु को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से गोपाल गुरु गोस्वामी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस श्रेणी के भक्त हैं, ये अभिराम ठाकुर ने इस कार्य से साबित कर दिया। और एक इसी प्रकार की कथा है, आप सबने रघुनंदन ठाकुर का नाम भी सुना होगा। वो मुकुंद दास के पुत्र थे। गौर मंडल में कई ऐसे गांव हैं जहां महाप्रभु के भक्त रहा करते थे। उनमें से एक गांव का नाम था श्रीखंड। तो श्रीखंड में नरहरि दास और मुकुंद दास ये दो भाई रहा करते थे। और मुकुंद दास वो वैद्य थे और उनके बच्चे का नाम था रघुनंदन। ये जो सुंदर लीला हुई थी जिसमें कि उन्होंने भगवान को एक लड्डू खिलाया था, साक्षात भगवान ने लड्डू खाया था, वो लीला तो आप जानते ही हैं। तो और महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा था इस घटना के बाद कि अरे रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है या तुम रघुनंदन के पुत्र हो, कौन बेटा है कौन पिता है, ये जरा मुझे बताना। तो मुकुंद दास ने कहा कि हालांकि वो रघुनंदन के पिता थे, फिर भी मुकुंद दास ने कहा था कि रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूँ। क्योंकि जहां से हमें भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है वो व्यक्ति हमारे पिता के समान हो जाता है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ बहुत सही कहा, बहुत अच्छा कहा। उम्र की बात नहीं होती है, जहां से हमें भक्ति मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति, हमारे पिता तुल्य हो जाता है, गुरु तुल्य हो जाता है। तो रघुनंदन ठाकुर का दर्शन करने के लिए अभिराम ठाकुर आए। सब जगह श्रीखंड में बात फैल गई, अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, रघुनंदन का दर्शन करने आ रहे हैं, दंडवत करने आ रहे हैं। तो मुकुंद दास बड़े चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए क्या किया जाए। अब इस लीला के ऐसे दो प्रकार है, कई ऐसा कहते हैं कि जब अभिराम ठाकुर मुकुंद दास के साथ सामने आए तो घबरा कर मुकुंद दास ने कह दिया कि रघुनंदन नहीं है, नहीं है, यहाँ घर में नहीं है। तो अभिराम ठाकुर थोड़े निराश हो गए और वापस चले गए। और रघुनंदन ने जब सुना कि अभिराम ठाकुर आए हैं, यहाँ पे आए थे लेकिन मुझसे मुझे दर्शन किए बिना, मुझे दर्शन दिए बिना वो चले गए हैं, तो उनके पीछे पीछे भागते गए और दूर एक स्थान में उनके पास में पहुंचे और दोनों ने आलिंगन किया और वाहन व्यक्त किया। एक दूसरी कथा ऐसी है कि उसी स्थान में श्रीखंड में ही अभिराम ठाकुर ने अपना दर्शन दिया रघुनंदन को, रघुनंदन का दर्शन दिया और आलिंगन किया, दोनों भाव विभोर हो गए और प्रेमावेश में आके दोनों कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। और इस प्रकार से नृत्य हुआ, दोनों इतने उछल कर नृत्य कर रहे थे कि रघुनंदन के चरणों में जो एक नुपुर था वो अपने चरणों से छूट कर 4 मील दूर चला गया अकाई हट नाम के एक जगह में। अकाई हट में रघुनंदन ठाकुर के एक शिष्य रहा करते थे जिनका नाम था कालिय कृष्णदास। तो कालिय कृष्णदास के भजन कुटीर में आके वो गिर गया नुपुर, और जिस स्थान में वो नुपुर गिरा उसे अविवाहित कुंड है, इसे नुपुर कुंड कहते हैं। और वहां पर कालिय कृष्णदास का एक मंदिर है और उस मंदिर में आज भी ये नुपुर है, ऐसे कहा करते हैं। हमने देखा तो नहीं है, गए नहीं उस तक, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो ये काटवा नाम के शहर के पास में है, करवी गांव में। काटवा शहर का नाम तो आपने सुना होगा। काटवा शहर में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया था, तो इसके पास में करवी नाम का जगह है। तो ये नूपुर आज भी उस गांव में है। अभिराम ठाकुर के पास एक चाकू हुआ करती थी जिसका नाम था जय मंगल, और जिसे वो चाबुक से मारते उसे कृष्ण प्रेम हो जाता था, और इतना जितने जोर से मारते उतना ज्यादा कृष्ण प्रेम और इतना ज्यादा दिव्य आनंद। तो भाव में आकर कभी कभी ऐसे चाबुक पर आया करते थे। कभी कोई एक भाग्यवान आ जाए, जिसको एक चाबुक पड़ जाए तो उसका भाग खुल जाता था, जीवन सफल हो जाता था। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य वहां पर आए और अभिराम ठाकुर का बड़ा स्नेह था श्रीनिवास आचार्य के ऊपर, तो एक बार नहीं तीन बार चाबुक से प्रसाद दिया। और तीन बार जब ऐसे चाबुक का स्पर्श हुआ तो मालिनी देवी ने अभिराम ठाकुर से निवेदन किया कि और नहीं करना, क्योंकि ये लड़का है अब इतना कृष्ण प्रेम सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए और नहीं चाबुक मारना, और नहीं मारना। तो फिर अभिराम ठाकुर वहीं पर रुक गए और श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने आलिंगन किया और आलिंगन करके फिर बहुत कृपा दी। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को अभिराम ठाकुर जी की कृपा हुई। ऐसे कई लीलाएं अभिराम ठाकुर के बारे में हैं, अभिराम लीलामृत में, भक्ति रत्नाकर में और गौड़ीय वैष्णव अभिधान, इसमें भी ये जो घटना है, जो लीला है रघुनंदन ठाकुर के बारे में और उनके नुपुर के बारे में, ये गौड़ीय वैष्णव अभिधान में पाया जाता है। तो आज इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि पर अभिराम ठाकुर जी का तिरुभाव हुआ और पुनः वो अपने नित्य लीला में चले गए और नवद्वीप में वहाँ नित्य लीला में वो अभिराम ठाकुर हैं और कृष्ण लीला में वो श्री राम सखा है। तो आज के दिवस पर हम अभिराम ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि एक बार ये जय मंगल चाबुक का स्पर्श हमें भी हो जाए, कि वो हमें भी कभी उस स्पर्श उस चाबुक से कभी वो प्रसाद दें जैसे कि हमारे जीवन सफल हो जाएगा और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो जाएगा। श्री अभिराम ठाकुर महाशय की जय। श्री अभिराम ठाकुर तिरुभाव दिवस महोत्सव की जय। गौ प्रेमानंदे हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? हमने जहाँ पढ़ा वहाँ लिखा था चैत्र और तिरुभाव दिवस तो है आपको पता नहीं, सप्तमी तो है लेकिन दशाश्रम नहीं है, किसी के पास पंचांग है तो देख सकते हैं, पंचांग ही देख लेंगे, लेकिन जहाँ हमने पढ़ा था वहाँ चैत्र लिखा था वे हमने भी दोहराया। तो ये पंचांग देख सकते हैं वैशाख, हो सकता है कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के सप्तमी में। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री अभिराम ठाकुर महाशय की गौ प्रेमानंदे।
दो बार उठाया ही नहीं।